नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। आप सबका स्वागत है श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कान वृंदावन में। दामोदर कार्तिक मास में प्रातः श्रीमद् भागवत में सत्य सत्संग में श्रीमद् भागवत महापुराण के पांचवें स्कंद के 19वें अध्याय में हम जम्बू द्वीप के निवासियों की प्रार्थनाएं हैं उसके अंतर्गत आज हम किम पुरुष वर्ष ये जम्बू द्वीप में नौ में से एक वर्ष है किम पुरुष वर्ष, जहां भगवान रामचंद्र की आराधना हनुमान जी करते हैं अन्य भक्तों के संग में जो किम पुरुष वर्ष में रहते हैं। तो पहले तो सरलता से ये समझ लें कि हम जहाँ रहते हैं ये जम्बू द्वीप में हम सब रहते हैं। जम्बू द्वीप के चारों ओर से खारे पानी का समुंदर है और बाकी नौ द्वीपों से ये अलग किया जाता है। नौ द्वीप हैं जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप में नौ वर्ष हैं जम्बू द्वीप में। हर एक वर्ष दूसरे वर्ष से एक पर्वत से अलग किया जाता है, लेकिन पूरे का पूरा जम्बू द्वीप खारे पानी के समुंदर से घिरा हुआ है। तो उसमें मध्य में जो वर्ष है उसको तो इलावृत वर्ष कहते हैं, जहाँ शंकर और पार्वती रहते हैं। बाकी जो रह गए आठ वर्ष, उसमें से हर एक वर्ष में नौ ही वर्षों में भगवान विष्णु के किसी न किसी रूप की आराधना होती है, भगवान के रूप की आराधना होती है। जैसे ये जो वर्ष जिसका अब वर्णन हम कर रहे हैं किम पुरुष वर्ष, इसमें भगवान रामचंद्र की आराधना होती है। तो ये जो वर्ष, इनमें सिर्फ एक ही वर्ष हमको आंखों से दिखाई देता है, वो है भारतवर्ष। जिसको हम आंखों से प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हैं वो तो केवल है भारतवर्ष। बाकी जो आठ वर्ष है इसको बोलते हैं सूक्ष्म वर्ष, ये आंखों से देखे नहीं जाते हैं। लेकिन इसको दूसरा नाम इसका है भौम स्वर्ग, ये धरती के ऊपर स्वर्ग है। ये जो स्वर्ग लोकों से स्वर्ग लोक में जो पुण्य करके जाते हैं, जब वहां से वापस नीचे आते हैं तो उनको पहले इन भौम स्वर्ग लोकों में 10,000 वर्ष तक रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो उनमें से एक ये किम पुरुष वर्ष है। वैसे किम पुरुष क्या ये पुरुष है, इसका मतलब वहां रहने वाले लोग जो है वो वन मानस की तरह हैं, वन में रहने वाले मानस, जैसे गिरिवासी वनवासी। तो जैसे बंदर शब्द जो है, वानर शब्द जो संस्कृत में, वानर का मतलब बंदर नहीं है, वानर का उसका मतलब है वनस्पति चरने वाला और गिरिवासी या वनवासी, वन में रहने वाला। तो यहां हनुमान जी वानर हैं, बंदर नहीं है, बहुत बड़ा अंतर है दोनों में। वो तो ज्ञानी नाम अगर गण्यम है, ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ है वो, तो जब बोलते हैं तो पंडित भी उसको पता नहीं लगा सकता है कि ये कितना गहरा बोल रहे हैं। और बाली जी संध्या वंदन करते थे, तो ये हमारे दिमाग में जो पता नहीं हमारे दिमाग में बंदर कहां से घुस गया है, लेकिन ये भगवान के भागवत पुरुष, ये तो देवता है जो धरती के ऊपर वानर रूप में आए हैं, केवल ब्रह्मा जी के वचन को जो उन्होंने दिया था रावण को, उसको सत्य करने के लिए कि मानव और वानर के अलावा और किसी से मुझे भय नहीं होना चाहिए, मानव और वानर मेरा क्या बिगाड़ेंगे। तो इसलिए मानव के रूप में भगवान रामचंद्र का अवतार मर्त्यालम, कल वाले श्लोक में परसों पढ़ाए मर्त्यालोक, मर्त्यानाम मने इस लोक धरती के ऊपर भगवान मानव जैसी लीलाएं कर रहे थे, और उनके सारे सहयोगी देवता वानर के रूप में आए थे। तो आज के श्लोक में मुख्य रूप से सिद्धांत ये है कि भगवान रामचंद्र तो साक्षात वसुदेव है, जो प्रथम चतुर्व्यूह है, वसुदेव संकृष्ण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, ये चारों के चार चार भाई के रूप में आए हैं। ये जो प्रथम चतुर्व्यूह है, वसुदेव संकृष्ण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, तो दूसरा इसके बाद आदि नारायण होते हैं, फिर ये चतुर्व्यूह दूसरा है, तो वसुदेव जी नारायण है, संकृष्ण लक्ष्मण है, और प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये हैं भरत और शत्रुघ्न। तो ये चारों के चारों विष्णु तत्व हैं, ये चारों के चारों, और कहीं किसी कल्प में भरत और शत्रुघ्न को सुदर्शन चक्र आदि का भी अवतार कहते हैं, लेकिन ये सब वैसे भगवान का ही विस्तार है। तो भगवान का विस्तार है तो फिर सीता के लिए रामचंद्र का रोना अथवा त्याग करना, ये भगवान के लिए कैसे हो सकता है? अथवा अंतिम लीला में भगवान रामचंद्र ने लक्ष्मण का परित्याग किया, जब काल साक्षात भगवान से मिलने आए कि कोई बीच में मिलने आया तो उसका आपको मृत्यु दंड देना पड़ेगा, तो लक्ष्मण को भी भगवान रामचंद्र ने त्याग किया, तो कैसे भगवान त्याग कर सकते हैं? ये भगवान है, तो ये सिद्धांत है आज के श्लोक का। तो आइए इस श्लोक का पाठ करते हैं। न वै स आत्मात्मवतां सुहृत्तमः, सक्तस्तत्र त्रैलोक्यं भगवान् वासुदेवः, न स्त्री कृतं कश्मलं अश्नावीता, न लक्ष्मणं चापि विहात्महरति, न वै सा, स का मतलब रामचंद्र, न वही मतलब कैसे हो सकता है, न नहीं, वही स रामचंद्र आत्म आत्मवताम सुहृत्तम, आत्म आत्मवताम, पहले तो आत्म जो है भगवान साक्षात, और दूसरा आत्मवतान, जैसे सताम होता है भक्त को, क्या बोलते हैं सताम, सत्व कौन है भगवान, जो उसके अनुयायी है उसको बोलते हैं सताम, इसका मतलब भक्त, और आत्मवतान का मतलब जिस जो आत्म साक्षात्कार किए हुए हैं, जिनने आत्मा के धन को पा लिया है, उनके लिए सुहृत्तम, सुहृद सुहृतर सुहृत्तम, तो भगवान उनका कितना शुभचिंतक है, सर्वश्रेष्ठ शुभचिंतक है भगवान उनका। तो भगवान रामचंद्र का यहाँ ये विशेषण दिया गया है कि सामान्य जो साधक आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं उनके लिए भी रामचंद्र सुहृत्तम है। सुहृत्तम, वैसे सुहृत्तम किसके लिए शब्द आता है, केवल भक्ति के लिए आता है, ये ध्यान में रखना चाहिए। भगवत गीता में योग वित्म युक्तत्म, ये दोनों शब्द केवल भक्ति के लिए आए, बाकी किसी भी साधन के लिए ये शब्द नहीं आता है। सुहृत्तम अंग्रेजी में कहते हैं गुड बेटर बेस्ट, तो सुहृद सुहृतर सुहृत्तम सुहृदतम, ये केवल भक्ति के, तो भक्तों का इसका अर्थ है जो भक्तों के सुहृद हैं। सक्तस, सक्तस का मतलब आसक्ति, त्रैलोक्यम तीनों लोकों में किसी में उनकी आसक्ति वैसे नहीं है, सारी सृष्टि उनकी अपनी है, और फिर लिखा है भगवान वासुदेव, ये तो साक्षात स्वयं भगवान वासुदेव हैं, तो जो स्वयं भगवान वासुदेव हैं, जो अपने भक्तों के अति सुहृत हैं, जिसको किसी वैसे संसार में किसी में आसक्ति नहीं है, लेकिन भक्तों के प्रति उनका अतिशय स्नेह है। न स्त्री कृतम कशमलम, तो स्त्री कृतम का मतलब सीता के अपहरण के बाद। तो हमको ये तो अभी बहुत सालों से भक्ति कर रहे हैं, ये तो मालूम है कि असली सीता तो राम जी ने पहले ही अग्निदेव के पास धरोहर रख दी थी। ये तो छाया सीता थी जिसको रावण ले गए थे। तो जो अपने हाथ से चीज तिजोरी में रखी हुई है और फिर कोई कहे कि चोरी हो गई, तो उससे मालिक को तो दुख होने की जरूरत नहीं है ना, उसको मालूम है मेरी चीज तो सुरक्षित पड़ी है। तो राम जी ने तो एक दिन सीता जी को वन में कहा था कि जब तक रावण आपका अपहरण नहीं करेगा तब तक देवताओं का काम सिद्ध हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए अब आप वैसे अग्निदेव को भी सीता को हाथ लगाना मर्यादा में नहीं है, इसलिए अग्निदेव ने अपनी पत्नी सुहा को बुलाया। सुहा ने सीता जी को गोद में ले लिया, फिर सुहा को अग्निदेव ने ले लिया, और ऐसे सीता देवी किशोरी माता सीता वो तो अग्निदेव के पास रही। वो जो वेदवती थी जिसने रावण को श्राप दिया, श्राप क्या दिया था, तेरे कुल का विनाश होगा, वो छाया के रूप में बाद में रावण के संग गई। तो राम जी को ऐसे सीता के विरह से कोई लिखा है कशमलम अश्नुति अश्नुवित, अश्नुवित का मतलब भोगना, क्या स्त्री के वियोग में रामचंद्र दुख भोग रहे थे क्या? नहीं, न लिखा है, न नहीं भोग रहे थे। वो एक सामान्य, इससे आगे वाले श्लोक में अगर आपने पढ़ा होगा तो रामचंद्र की शिक्षाओं के दो मुख्य उद्देश्य है, मिशन स्टेटमेंट रामचंद्र ये, किसके लिए? शिक्षणाम, किसको शिक्षा देने के लिए? न रावण का वध उनका मुख्य उद्देश्य था, उनका मुख्य उद्देश्य था मानव को शिक्षा देना। ऐसे इससे पहले वाला श्लोक में दो दिन पहले आपने सुना होगा, तो इनका यही उद्देश्य था। तो शिक्षा क्या देनी थी? पहली शिक्षा ये देनी थी, अगर स्त्री का पाणी ग्रहण करके विवाह करना है तो सात समुद्र पार जाना पड़े, महाभयंकर असुर रावण से लड़ना पड़े, तो भी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि वो दायित्व लिया है तो उसका सुरक्षा करनी चाहिए। अगर ये सामर्थ्य नहीं है तो ब्रह्मचारी बन के मंदिर में आके रहना चाहिए, झंझट में पड़ना ही नहीं चाहिए। दूसरा इसका दूसरा जो इसका भाग है वो ये है कि इतना इतना करने का साहस नहीं है तो आओ भगवान का भजन करो, इस झंझट में पड़ो ही नहीं, ये बहुत बड़ा भारी झंझट का कार्य है। तो रामचंद्र ने दोनों प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग वाले भक्तों के लिए मार्गदर्शन करके रखा है। जैसे प्रभुपाद जी कहते थे हमारे लड़के और लड़कियां बहुत अच्छी हैं जब तक शादी नहीं करते हैं, उसके बाद सबकी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। और फिर कहते हैं सभी कन्याओं का तो विवाह होना चाहिए लेकिन सारे लड़के ब्रह्मचारी बन जाए, अब कौन कैसे विवाह करेगा, ये बात समझ में नहीं आती है। तो क्या ये सिद्धांत ऐसे होते हैं? और जिसके पूर्व कुल के अच्छे, पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार होते हैं वो जीवन में, ये अग्नि का मार्ग है असल में, ब्रह्मचारी सन्यासी तो आग के अंदर गुजरना है, है? तो ये वो तो इसके मार्ग के ऊपर चलने में सामर्थ्य में भगवान की कृपा से आ जाता है, नहीं आए तो उनको विवाह में पाणी ग्रहण करे उसका पालन करना चाहिए, ये रामचंद्र की शिक्षा है। तो ये उनको दुख नहीं हो सकता है। और दूसरा क्या है? न लक्ष्मणम चापि विहातम, भाई लक्ष्मण का भी त्याग कर दिया, लक्ष्मण तो भगवान के बगैर रह ही नहीं सकते राम जी के बगैर, और राम जी लक्ष्मण के बगैर नहीं रह सकते। और लक्ष्मण का अर्थ ही है लक्ष्य, जो राम जी एक एक को देखने से दूसरा दिखाई दे जाए। तो लक्ष्मण तो जैसे डंडा है उसके ऊपर राम जी की पिता का है, लक्ष्मण है डंडा उसके ऊपर राम जी का झंडा, तो ऐसे दोनों साथ रहते हैं, अलग नहीं रहते। तो उसका भी अंत में त्याग कर दिया, कैसे करता? बोला नहीं हो सकता है। जैसे हम सामान्य रूप से कहें कि भगवान श्री कृष्ण इतना अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, गोपियां गोप और ये ग्वाल गैया इनसे तो कृष्ण का अतिशय प्रेम है, तो इन सबको छोड़ के कैसे 100 साल चले गए यहां से मथुरा और द्वारका। एक दृष्टि से चले गए लेकिन एक दृष्टि से सदा उनके साथ रहे, वो अदृश्य रूप से सदा वहीं उनके साथ रहे, ऐसा उनको कभी उसका वियोग हुआ ही नहीं। तो ऐसे बाहर की दृष्टि से लोकाचार में शिक्षा देने के लिए राम जी ने ये राजा के नाते ये कार्य किए, सीता का परित्याग किया या लक्ष्मण का परित्याग किया, लेकिन जो भक्तों के सौहृद हैं वो इनका दुख कैसे देख सकते हैं, अथवा हुए ही नहीं, वो तो हमेशा भगवान के संग ही थे, इसका अर्थ ये है। तो इस श्लोक का अब श्रील प्रभुपाद जी का अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। चूंकि भगवान रामचंद्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव हैं, न वही वही का मतलब चूंकि निश्चित रूप से, तो चूंकि भगवान रामचंद्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव हैं, वासुदेव हैं, जितने अवतार आते हैं ना धर्म स्थापना के लिए, असुर संहार के लिए, भक्तों का संरक्षण करने के लिए, वो बलराम जी के बाद आते हैं, बलराम जी के बाद वासुदेव आदि होते हैं, इसके बाद अवतार शुरू होते हैं। केवल स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो सब अवतारों के स्रोत है वो ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं, तब साक्षात अपने रूप में आते हैं। बाकी प्रायः जितने भी अवतार हैं, ऐसे कहें कि बलराम जी से आएंगे तो भी सही है, कहें वसुदेव से आएंगे तो भी ठीक है, और कहें संकृष्ण के बाद महाविष्णु से आते हैं तो भी सही है, वैसे आते गर्भोदक्षाई विष्णु से हैं वो भी सही है, और उसका ही अंश क्षीरोदक्षाई है जिसको प्रार्थना करते हैं वो भी गलत नहीं है। तो ये ऐसे है कि भाई हम सब वृंदावन में रहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन वृंदावन में मंदिर में बहुत कम रहते हैं, बाहर ज्यादा रहते हैं, लेकिन शहर सब रहते हैं वृंदावन में, तो गलत वो भी नहीं है। तो ऐसे वसुदेव के साक्षात वसुदेव हैं, अतः वे इस भौतिक जगत के किसी प्रकार, इस भौतिक जगत से किसी प्रकार लिप्त नहीं होते। ये कौन सी लाइन का अर्थ है? सक्त त्रिलोक्य न, तीनों लोकों में आसक्त नहीं होते, लिप्त नहीं होते। सक्त जो शब्द है इसका मतलब लिप्त होना, आसक्त होना, वो नहीं होते। ये भगवान का कौन सा गुण प्रदर्शित हो रहा है? 6 गुण में भगवान का ये कौन सा गुण है? वैराग्य, पूर्ण वैरागी हैं, सब कुछ उन्हीं का है लेकिन उनमें कोई आसक्ति नहीं है। वैसे सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं 16,108 रानियां द्वारका में श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की सभी चेष्टाएं करते थे, लेकिन श्री कृष्ण कभी किसी से आसक्त और लिप्त हुआ ही नहीं, तभी निर्लेप ही रहे। तो ये भगवान का, जो भगवान शब्द का कौन सा गुण है? वैरागी, सब त्यागी, किसी में आसक्त नहीं है। सक्त न, हाँ सक्त न है, सक्त त्रिलोक्यम, त्रिलोक्यम में सक्त नहीं, आसक्त हो सकते हैं, आसक्त नहीं है। वे सभी स्वरूप सिद्ध, ये स्वरूप सिद्ध हमेशा मुझे परेशानी होती है हिंदी वालों के अनुवाद की, ये आत्म, आत्मा का मतलब है आत्म साक्षात्कार किया हुआ, ये सामान्य रूप से ये शब्द है। स्वरूप सिद्ध बहुत ऊपर का स्तर है, असल में स्वरूप सिद्ध है भाव भक्ति पे आता है, भाव भक्ति के स्तर पे जब कोई पहुंचता है तो उसको कहते हैं स्वरूप सिद्ध। एक इसका अंग्रेजी में एक अर्थ देख के सेल्फ रियलाइज सोल्स, सेल्फ रियलाइज सोल को सामान्य रूप से क्या कहते, आत्म साक्षात्कार किया हुआ व्यक्ति। और यहां जो लिखा है स्वरूप सिद्ध, ये और बहुत, क्योंकि आत्म साक्षात्कार तो ज्ञानी भी करते लेकिन वो स्वरूप सिद्ध नहीं है, उनको अपना स्वरूप, तो उनको अपना स्वरूप ब्रह्म में मिलाना है तो उसमें वो सुख क्या लेंगे। कहते 2 चिमटी थी, दोनों ने कहा कि हम अच्छा आज रस मलाई चाश बनी है, रसगुल्ला खाने जा रही है, गुलाब जामुन। तो दोनों चिमटी पहुंची, एक ने बोला देखो मैं तो कढ़ाई से दूर रहूंगी, जो जो थोड़ा छींटा नीचे गिरेगा उसको खाऊंगी। दूसरे ने बोला नहीं नहीं मैं तो इसके ऊपर चढ़ के और इसका अच्छी तरह से खाने का इच्छा करूं। वो नीचे गिरी, नीचे गिरी और कढ़ाई में गिरी और वो घोट रहा था उसमें घुल गई, तो वो क्या खाने वो चीनी का मजा लेगा क्या? जो बाहर एक छोटा सा इतना भी चीनी बाहर गिरी वो बाहर बैठी हुई तो खा रही थी, लेकिन अंदर गई वो तो बेचारी घिस पिस गई। तो ये तो आत्म साक्षात्कार वाले तो अंदर घिस जाते हैं, इनको क्या पता मीठा है कि कड़वा है चीनी। तो ये आत्म साक्षात्कार इसका अर्थ नहीं है, इसका अर्थ है एकदम स्वरूप सिद्ध नहीं है। स्वरूप सिद्ध जो भक्त होते हैं वो कहते हैं कि भगवान की लीला में मेरा क्या भाग है, मेरा उधर स्वरूप क्या है, मैं सेवक हूं लेकिन कैसी सेवा मेरी है। वात्सल्य प्रेम का सेवक हूं, सख्य प्रेम का सेवक हूं, या माधुर्य प्रेम का सेवक हूं, शांत रस का सेवक हूं, ये स्वरूप सिद्धि इसको बोलते हैं। तो ये आत्म साक्षात्कार किए हुए, क्योंकि भक्त तो सबसे सुहृद हैं लेकिन सुहृदतम भक्तों के हैं। तो आत्म साक्षात्कार किए हुए के परम प्रिय परमात्मा और उनके घनिष्ठ मित्र हैं। ये घनिष्ठ मित्र भगवान अशिला प्रभुपाद ने किसका अनुवाद किया है? सुहृदतम, सुहृदतम का अनुवाद किया है इंटीमेट फ्रेंड। सुपर सोल ऑफ ऑल सेल्फ रियलाइज सोल्स एंड इज देयर वेरी इंटीमेट फ्रेंड, वेरी इंटीमेट फ्रेंड सुहृदतम। वैसे अंग्रेजी में ऐसे ही लिखना पड़ेगा क्योंकि सुहृद का अर्थ है ही नहीं अंग्रेजी में। प्रभुपाद जी लिखते हैं सुहृद के वैसे तीन संबंध संसार में होते हैं, एक होता है मित्र, एक होता है संबंधी, एक होता है सुहृद, तीनों में अंतर है। मित्र वो है आप काम आओगे तो आपके काम आएगा, संबंधी वो है आप संबंध निभाओगे तो वो निभाएगा, सुहृद वो है कि आप कुछ करो न करो, संबंध निभाओ ना निभाओ, लेकिन वो तो आपका हित करेगा ही करेगा। तो सुहृद केवल एक भगवान होता है, एक माता होती थी, वो थी इसलिए कह रहा हूं कि आज तो बेचारे को जन्म ही नहीं लेते उससे पहले मार देती है। अभी तो नया ये तो कानून बदलना पड़ेगा। पहले माता को सुहृद मानते थे, वो तकलीफ सब उठा के बच्चे को सुखी देखना चाहती थी, थी है जो भी हो। और तीसरा गुरु सुहृद है, प्रभुपाद जी सबकी चिट्ठी में लिखते थे आप सबका शुभ चिंतक सुहृद, ये तीन ही सुहृद होते हैं और चौथा होता ही नहीं, चौथे को सुहृद कहा नहीं जा सकता है। बाकी सब स्वार्थ के साथ संबंध रखते हैं, चाहे मित्र हो चाहे कोई हो। तो सुहृदतम का मतलब है असल में दो शब्द, एक शब्द है सहउदर, सहउदर मतलब एक ही पेट में आया हो उसको कहते हैं भाई, जो एक ही पेट में आया उसको बोलते हैं भाई सहोदर। और सुहृद का मतलब जिनकी दिल में एक ही दिल है दोनों की, सुहृद का मतलब असल में हो गया मही मन मना, मतलब भगवान के दिल वाला, भगवान के मन वाला। तो सुहृद का मतलब दिलबर, जो जो जिनकी दिल में एक ही बात है, दो बातें नहीं है। तो ये बहुत बड़ा गंभीर शब्द है असल में। तो भगवान अपने ऐसे भक्तों का जो संसार में लिप्त नहीं होते हैं, जैसे भगवान लिप्त नहीं होते हैं, उनके बहुत बड़े सुहृद हैं। सुहृद का मतलब यह है कि उनके, प्रभुपाद ने ये शब्द अंग्रेजी में जो घनिष्ठ मित्र है ना, ये शब्द एक जगह लिखा है भगवद गीता के 18वें अध्याय के 58 श्लोक में लिखा है, जो भगवान श्री कृष्ण की 24 घंटे निरंतर प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं भगवान उसके घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। वहां लिखा है शब्द घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। फिर लिखा है ये भगवान जो घनिष्ठ मित्र हैं अपने मित्र के, मतलब भक्त के, सब आवश्यकताएं नहीं, नीड्स नहीं लिखा है, कंफर्ट, उनकी सारी सुखपूर्वक सुविधाओं का देखभाल करते हैं, वो उनको देते हैं। ही प्रोवाइड ऑल कंफर्ट्स, नीड्स नहीं लिखा है, जरूरत नहीं, जरूरत तो सबकी भगवान पूरी करता है, हवा देता है सांस लेने के लिए, पानी बरसा के बरसात का सबको ही देता है, लेकिन उनके सब बहुत सुविधाओं का। और फिर तीसरी लाइन में लिखा है ऐसा भगवान जो सुहृदतम है वो अपने आप को ही भक्त को दे देते हैं, केवल उनकी सुविधाओं का ध्यान नहीं करते, अपने आप को ही उसको दे देते हैं। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप दे दिया। अब तुम चाहो तो घोड़े यहां ले जाओ, घोड़े वहां ले जाओ, जैसे आज्ञा करता था वैसे कर रहे थे। अपने आप को देना का मतलब आज्ञा पालन करने के लिए तैयार हो जाए। ये बहुत बड़ा भारी प्रश्न है। असल में मुक्ति तो भगवान पूतना और पूतना के पूरे परिवार को दे दिया, सकुला। ब्रह्मा जी कहते पूतना को दिया, अघासुर को, बकासुर को, सबको मुक्ति दे दिया। अब ये तो बताइए आप गोपियों को क्या देंगे, ग्वालों को क्या दे देंगे, गायों को क्या देंगे, यशोदा माता को क्या देंगे? सबसे ज्यादा आपके पास तो मुक्ति है, वो तो आपने असुरों को दे दी। तो ये जो प्रेमी भक्त हैं इसको क्या कुछ नहीं है आपके पास देने को? आप ही स्वयं अपने आप को इसको देंगे तो भी ऋणी रहेंगे। और भगवान कहते हैं मैं कुछ नहीं दे सकता हूं, इसलिए उनका ऋणी हो जाता हूं उनकी सेवा के लिए। तो ये जो भाव है ये बहुत है कि भगवान अपने आप को अपने भक्तों को दे देते हैं। इसे दुर्लभा है भक्ति में, सुदुर्लभा। भक्ति बहुत बहुत दुर्लभ है, आसानी से नहीं मिलती है, क्योंकि पहले तो भगवान जिसको भक्ति देते हैं उसको अपने आप को देना पड़ता है, इसलिए भक्ति नहीं देते हैं, बाकी सब कुछ दे देते हैं। और भक्ति कब देते हैं? जब कोई भगवान का प्रेमी भक्त भगवान को भक्ति देने के लिए प्रार्थना करता है तभी देते हैं, अपने आप नहीं देते। बहुत लाखों करोड़ों में किसी एक को अपने हृदय से भगवान भक्ति दें तो दें, नहीं तो भक्ति हमेशा भगवान भक्तों की कृपा से, भक्तों के अनुग्रह से, भक्तों के प्रार्थना से देते हैं। तो भक्ति जिससे भगवान वश में आते हैं वो केवल भगवान के भक्तों से मिलेगी, और कोई साधन नहीं है। इसलिए भगवान के भक्त सबसे बड़ा निधि है संसार में, अगर किसी को मिल जाए तो उसका जीवन सफल है। हरे कृष्ण। आगे कहते हैं वे परम ऐश्वर्यवान है, भगवान परम ऐश्वर्यवान है। ये शब्द कहां है? भगवान वासुदेव, ये भगवान शब्द की परिभाषा है, परम ऐश्वर्यवान है। अतः पत्नी बिछो का मतलब बिछड़ने का, के कारण उन्होंने न तो अधिक कष्ट उठाए होंगे। सीता जी गई तो उन्होंने कोई अधिक कष्ट उठाए नहीं होंगे, नहीं उन्होंने अपनी पत्नी तथा अपने लघु भ्राता लक्ष्मण का परित्याग किया। लोग ये प्रश्न पूछते हैं प्रायः जहां जाते हैं, अरे भगवान रामचंद्र इतना मर्यादा पुरुषोत्तम है, सीता का परित्याग क्यों कर दिया एक धोबी के कहने के ऊपर? ये सामान्य प्रश्न सब जगह पूछा, लक्ष्मण का कोई नहीं पूछता है। लक्ष्मण व्यय के विषय में ये प्रश्न पूछते हैं, उर्मिला ने कौन सा अपराध किया था? लक्ष्मण 14 साल वनवास चले गए, उर्मिला से पूछो उसको कोई परेशानी है, तुमको काहे की परेशानी है? भाई सीता ने कभी भगवान से रामचंद्र को कहा कि आपने अन्याय किया है? जब सीता ने नहीं कहा तो हम क्यों कहते हैं, हम सीता की वकालत क्यों करते हैं? एक खड़ग सिंह कौन, एक वकील हुए थे यहां अंग्रेजों के जमाने में, मेरे ख्याल में हरियाणा नहीं आगे पंजाब से, वो तो राजा के मामा थे कुछ, तो उन्होंने चिट्ठी लिखवा दी कि आप अंग्रेज को बोलो हमको वकील, हमको यहाँ के मजिस्ट्रेट बना दे। तो अंग्रेज ने कहा पढ़े लिखे हो? बोला नहीं। बोला फिर न्याय कैसे करोगे? बोला हम इतना पंचायत का न्याय करेंगे। उसने बोला अब राजा ने लिखा है, भुगते का राजा हमारा क्या? उसने बोला इसको बना दो जज। अब जज बन गए महाराज। अब एक आया केस, बोला इसने हमारे खेत में हमको मारा है, बोला इसने खेत में मारा है तो इसको मारो। तो वकील साहब ने कहा कि मारा नहीं है, मारा का मतलब जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं ना, अभी हमारी भाषा में हम बोलते हैं हिंदी में अरे भाई इसको मारो मत, तो अंग्रेजी बोले डोंट किल हिम, अरे किल हुआ मारना, मारना किलिंग नहीं है, मारने का मतलब जान से मारना नहीं है, थप्पड़ मारना ही मारना है। तो वो अंग्रेजी में वकील कहना बोला कि इसने मारा नहीं है सर, बोला तुम इसके पक्ष वाले हो? तो बोले नहीं मैं वकील हूं, बोले तो बात तो इनकी कर रहे हो ना, अरे इनको भी फांसी पे चढ़ाओ। और उसके बाद कोई अपराध नहीं हुआ पूरे राज में। बोला खड़ग सिंह सबको वकील को ही फांसी चढ़ा देता है जिसकी वकालत करोगे तो। अभी अंग्रेज का राज था, राजाओं का राज था, ऐसे डरते थे लोग, कोई गलती करते ही नहीं थे। तो ये नेम जो है बहुत पक्का है। तो भगवान ने कैसे उनका छोड़ा होगा? ये बहुत बड़ा बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं और ये श्लोक उनका सिद्धांत सीधा पढ़ाया कि कहां भगवान ने ऐसे किया हुआ। प्रभुपाद ने तो एक श्लोक पहले में लिखा है, रामचंद्र चाहते तो हजारों लक्ष्मियां उनकी सेवा में, क्या सीता प्रकट नहीं कर सकते थे क्या? लेकिन भगवान ने ये लीला क्यों की है? हमको शिक्षा देने के लिए, हमारे को शिक्षा देने के लिए। ये बहुत बड़ा दुखदायी कार्य है संसार में, तो इससे सावधानी से बरतना। श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य, श्री भगवान की परिभाषा, श्री भगवान की परिभाषा देते हुए हम ये कहते हैं कि वे छहों ऐश्वर्यों धन यश बल प्रभाव रूप तथा त्याग से युक्त हैं। तो प्रभुपाद ने ये पहले छह जो भगवान के अर्थ है वो बता दिया। इस भौतिक जगत से किसी प्रकार का लगाव न होने के कारण वे परित्यागी कहलाते हैं। उनका लगाव वैकुंठ जगत और वहां के जीव आत्माओं से है। अब यहां इस श्लोक में एक बात लिखा है कि तीन लोक से आसक्ति नहीं है, तो कहीं तो होनी चाहिए ना भाई, यहां नहीं है तो कहीं तो होगी। हां है, अपने आध्यात्मिक जगत से आसक्ति है, भौतिक जगत से नहीं, आध्यात्मिक जगत से है। तो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं मुक्त जीव और भौतिक जगत में रहते हैं बद्ध जीव। तो भौतिक जगत तो है एक चौथाई, आध्यात्मिक जगत है तीन चौथाई। तो भगवान अपने आध्यात्मिक जगत में तो सबसे स्नेहपूर्वक व्यवहार करते हैं, वहां तो सब प्रकार के भक्त हैं, जहां जहां जिस भाव के उनके साथ वैसा आदान प्रदान करते हैं। लेकिन उनकी आसक्ति भौतिक जगत में नहीं है। भौतिक जगत से के समस्त कार्यकलाप दुर्गा देवी की अध्यक्षता में संचालित होते हैं। सारे भौतिक जगत के कार्य भगवान ने किसको दे दिए हैं? दुर्गा देवी को। मयाधिक्षेण प्रकृति सूयते से चराचरम, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति ही संसार में सब चर और चराचर का चला रही है। और श्रील प्रभुपाद ने यहां से यहां ब्रह्म संहिता से श्लोक का उद्धृत किया, स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखाच्छाएव यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा। दुर्गा के रूप में भौतिक शक्ति के कठोर नियमों के अंतर्गत सब कुछ घटता है संसार में। कठोर नियमों जब शब्द कहा है तो कौन सा श्लोक याद आना चाहिए? दैवी एष गुणमयी मम माया दुर्त्रय, कठोर का शब्द है दुर्त्रय, बड़ा कठोर नेम है। लेकिन हाँ, शक्ति काय के लिए कर रही है? हमको सुधारने के लिए, सुधारने के लिए कर रही है। दंड देना उनका मुख्य उद्देश्य नहीं है, दंड देने के साथ मुख्य उद्देश्य सुधारना है, तो वो उनके हवाले ये काम है। दुर्गा के रूप से भौतिक शक्ति के कठोर नियमों से के अंतर्गत सब कुछ घटता है, फलतः भगवान इस भौतिक जगत से पूर्ण वृत्त रहते हैं और उन्हें इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं रहती। भगवान को इस जगत के काम में कोई इतने वृक्त है कि कैसे चल रहा है, भी चलाएगी, इसको नेम बता दिया है, अपने आप कानून से चला कितनी रहेगी, तो शक्तिशाली है अपने आप में, तो भगवान को इस सब वक्त इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं रहता। श्री सीता देवी का संबंध वैकुंठ जगत से है, इसी प्रकार लक्ष्मण संकर्षण के प्रकाश स्वांश रूप से और भगवान रामचंद्र स्वयं वासुदेव हैं। अब प्रभुपाद जी कहते हैं जगत भौतिक जगत से भगवान को आसक्ति नहीं है, लेकिन सीता तो भौतिक जगत की है नहीं, वो तो भगवान की अपनी अलादीनी शक्ति है। और लक्ष्मण क्या है? भगवान का प्रथम विस्तार बलराम जी जो है उसका स्वरूप है, तो बलराम जी का अंश है संकृष्ण, संकृष्ण से लक्ष्मण जी आते हैं। तो ये दोनों तो देखो, एक भगवान से के सीधे तरफ से निकलता है वो बलराम जी, और वहां से आगे संकृष्ण और लक्ष्मण, और एक भगवान से वांग भाग से राधा रानी निकलती है, वो फिर आगे सारी लक्ष्मियां और सारी गोपियां ये सब उससे बनती है, सारी वैकुंठ की भगवान की रानी ये सब उसका विस्तार है। तो दोनों प्रकार से ये तो भौतिक जगत के नहीं है, ये तो आध्यात्मिक जगत के हैं। क्योंकि भगवान सदा दिव्यता से युक्त हैं, अतः उनका लगाव उन सेवकों से रहता है जो उनकी दिव्य सेवा करते हैं। ये क्या शब्द लिखा है अंग्रेज है, भगवान दिव्य है। पहले क्या शब्द है? चूंकि भगवान सदा दिव्यता से युक्त रहते हैं, इसका मतलब क्या है? भगवान सदा दिव्यता से युक्त रहते हैं, इसका क्या मतलब होगा? अंग्रेजी में लिखा है, सिंस द लॉर्ड इज ऑलवेज स्पिरिचुअली क्वालिफाइड। स्पिरिचुअली क्वालिफाइड का मतलब क्या? सच्चिदानंद। इसका मतलब दूसरा है, भगवान तीनों गुणों से सदा ऊपर रहते हैं, और जो तीनों गुणों से ऊपर होते हैं उस स्थिति को क्या कहते हैं? वासुदेव शब्दते, विशुद्ध सत्वम वासुदेव शब्दते। तो भगवान हमेशा अपने सच्चिदानंद स्वरूप में रहते हैं, उनका लगाव उनके सेवकों से रहता है जो उनकी दिव्य सेवा करते हैं। उनकी दिव्य सेवा करते हैं का इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अब इस श्लोक को एक मिनट ध्यान दीजिए, मेरे ख्याल में लाइन बार लगना शुरू होने का टाइम हो रहा है। हरे कृष्णा। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योवेति तत्वतः। मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, ये हुआ दिव्यता। अब इसको तत्व से जो जानते हैं, अब इसको तत्व से कौन जानेगा? जो स्वयं दिव्य स्तर के ऊपर होगा। तो विशुद्ध सत्व स्तर जिस भक्त को प्राप्त है, जो तीनों गुणों से परे गए हैं, वो ही भगवान को तत्व से जान सकते हैं, और भगवान उनके साथ व्यवहार करते हैं सीधा। बाकी सबसे व्यवहार करते हैं दुर्गा के माध्यम से, बाकी सबसे व्यवहार है दुर्गा के माध्यम से, लेकिन सीधा व्यवहार है उनसे जो विशुद्ध सत्व के स्तर के ऊपर। और कैसे तीनों गुणों से ऊपर जाने का साधन क्या है? अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सगुणान समतैते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। केवल अनन्य भक्ति से तीनों गुणों से ऊपर विशुद्ध सत्व में जाया जा सकता है, वो ही उससे बच सकता है। क्योंकि भगवान सदा दिव्यतम है, तो दिव्य भक्तों के साथ क्या करते हैं? सेवकों से रहता है, उनका लगाव सेवकों से रहता है। लगाव, लगाव का मतलब अटैचमेंट, अटैचमेंट का आसक्त, अपने भक्तों में उनकी प्रीति रहती है। वे ब्राह्मण गुणों से नहीं, वरना जीवन के सत्य के लगाव रखते हैं। क्या फिर अंग्रेजी को देखना पड़ेगा भाई। ही इज अटैच्ड टू द ट्रुथ इन लाइफ, नॉट टू द ब्राह्मणिकल क्वालिटीज। भगवान सत्य में भगवान का रत रहते हैं, सत्य से रत रहते हैं, सत्य से आसक्त रहते हैं। तो सत्य जो सत्य किसको कहते हैं? सताम। सताम, सताम का मतलब भगवान के भक्त, सत्य के भक्त सताम, उनसे भगवान का दृढ़ प्रेम होता है, आसक्ति होती है। वो हमारे गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन हमारे शुद्धता विशुद्ध स्थिति को देखते हैं। निस्संदेह उनका लगाव भौतिक गुणों से किसी प्रकार नहीं रहता। यद्यपि वे समस्त जीव आत्माओं के परमात्मा हैं, किंतु जो आत्म सिद्ध हैं उनके समक्ष वे प्रकट होते हैं और अपने दिव्य भक्तों के लिए परम प्रिय हैं। भगवान है तो सबके परमात्मा, वो परमात्मा है, क्या करते हैं? उपदृष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, वो तो सब देखते रहते हैं कि आपकी आवश्यकता पूरी हो गई, आपको प्रकाश मिल रहा है, पानी मिल रहा है, रोटी मिल रही है, सांस ले रहे हो, ये तो सबके साथ समान है। लेकिन जब प्रेम का आदान प्रदान करता है तो केवल अपने भक्तों के संग करते हैं, सबके साथ नहीं करते हैं। परमात्मा के साथ के रूप में केवल देखते रहते हैं, आपके अपने कर्मों का जो फल है वो देते हैं, लेकिन भक्त के नाते में बाकी सब चोपड़ा फाड़ के सीधा सा हाथ से पकड़ के किसको पकड़ते हैं? जिसकी चूटियां होती है उसको पकड़ते हैं, जिसकी चूटियां नहीं है उसको हाथ नहीं डालते। तो चूटियां जिसको है उसको भगवान पकड़ लेते हैं, चूटियां नहीं है, चाहे स्त्रियों के पास चूटियां है तो पहले इनको पकड़ते हैं, गोपियों की तरह इनका भाव पहले, लेकिन आजकल यही कटवा रही है तो भगवान परेशान है। भगवान परेशान हो गए कि इनको चोटी रखने को दी थी ताकि जल्दी इनकी जान छूट जाए संसार से, लेकिन कटवा दिया, अब क्या करें। तो भक्तों ने तो लंबी लंबी चोटियां रख दी कि भाई हमारे को तो चोटी का मतलब है जिसने एक भगवान को पकड़ा है, एक भगवान को पकड़ा है बाकी सब छोड़ दिया, ये हो गया चोटी वाला। यदि वे समस्त जीवों के जीवात्मा है, पर तुम भक्तों के लिए बहुत परम प्रिय है, प्रेमंजन सुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु, इसका अर्थ ये होगा कि है तो सबके सामने लेकिन दिख तो किसको है, जिसके आंखों में प्रेम है उनको भगवान दिख जाते हैं। क्योंकि भगवान रामचंद्र ने मानव समाज को ये शिक्षा देने के लिए कि राजा को कितना कर्तव्य निष्ठ होना चाहिए अवतार लिया था। तो भगवान रामचंद्र के अवतार का मुख्य उद्देश्य था राजधर्म कैसे चलाना चाहिए, एक राजा का कर्तव्य क्या है, इसके लिए अवतार लिया था। अतः उन्होंने माता सीता तथा लक्ष्मण का बाह्यतः परित्याग किया। बाह्यत्य परित्याग किया का मतलब क्या है, बाह्यत्य का मतलब बाहर से परित्याग किया, लेकिन अंदर से नहीं किया, बाहर से परित्याग किया, जो दुनिया के नजरों में परित्याग किया लेकिन हृदय से नहीं, अंदर से उनका संबंध साथ में सदा जुड़ा रहा। उन्होंने उनका वास्तविक परित्याग नहीं किया था। अतः हमें आत्मसिद्ध पुरुषों से भगवान रामचंद्र के कार्यों को सीखना चाहिए, तभी भगवान के दिव्य कार्यों को समझा जा सकता है। इसका अर्थ है कि शास्त्र को भगवान के प्रेमी भक्तों से समझेंगे तो समझ में आएगा, ऐसे तथाकथित उससे आलोचना करेंगे तो कभी हमारे को भगवत तत्व को समझने का सौभाग्य प्राप्त हो ही नहीं सकता है। तो यहां ये तात्पर्य श्लोक का पूरा होता है। तो अब क्या हमने सीखा दो शब्दों में, भगवान के कार्यों को हम अपनी छोटी बुद्धि से समझ नहीं सकते हैं। भगवान तो बहुत ऊपर है, वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञा न जाने, भगवान के भक्तों के कार्यों को भी समझना संभव नहीं है। भक्त भी कभी कभी कैसे कार्य करते हैं हमको समझ में नहीं आता है, इसलिए क्या करना चाहिए, हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहिए कि जो आप करते हैं अच्छा ही करते होंगे, हमारी बुद्धि में नहीं आता है, हम छोटे हैं हम तुच्छ हैं, लेकिन आपने सबका भलाई किया है। भगवान से और भगवान के भक्तों से किसी का अहित होता ही नहीं है, पहला कानून ये है, भगवान और भगवान के भक्तों से किसी का अहित होता नहीं है, देवता से हो सकता है। भागवत धर्म में लिखा है कि आप साधु तो कभी किसी को दुख देंगे ही नहीं, लेकिन ये देवता तो कभी गर्मी देते हैं तो पसीना निकल जाता है ना, तो देवता दे सकते हैं लेकिन साधु और भगवान नहीं देगा, कभी नहीं देते। इसलिए जो वो करते हैं उसमें हमारा भला है, हमको पता नहीं लगता है लेकिन उसमें हमारा भला है। तो हर हालत में हाथ जोड़ के जो आप भगवान कर रहे हैं इसमें हमारा भला है, भले हमको लगता है कि बाहर से दुख आ रहा है लेकिन आप हमारे को अपना जानते हैं तब ये दिया होगा, तो इसमें हमारा शोधन ही होगा, इसमें हमारा भला ही होगा। तब कौन सा श्लोक याद आना चाहिए, ब्रह्मा जी की प्रार्थना समीक्षमाण, भगवान में तो नजर लगाए रखे, दुख को आए तो कर्म का समझ के भोग ले, लेकिन आशा बंधी रहे कि आज नहीं तो कल कृपा करेंगे ही करेंगे। हम तो बड़े दुष्ट थे, इससे ज्यादा दुख आना चाहिए था, थोड़ी सी लाइन के बाद ही प्रसाद मिल जाता है कुछ पकाना नहीं, चूल्हा जलाना नहीं, हाथ खड़ा हाथ में आटा लगना नहीं, गर्मी लगनी नहीं, थोड़ी लाइन में तो इसमें क्या कौन सी तकलीफ है, हमें तो मिल जाएगा। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की विदाई गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्णा।